मेरे अत्यंत प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में कुछ बातें करूंगा, सामान्य सी बातें। लेकिन आइए पहले कुछ जो दूसरी घटनाएं हैं, जो छोटे मोटे समाचार हैं, उन्हें देख लेते हैं। लगातार अखबारों में आप देख रहे हैं, चैनल्स पर भी आपको जो पेगायस जासूसी कांड है, इसके बारे में ढेर सारे डिस्कशन सुनने को मिल रहे हैं, ढेर सारी बातें पढ़ने को मिल रही हैं। ये अभी कुछ समय तक आती रहेंगी। यहाँ मैं आपके दिमाग में एक तथ्य स्पष्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि सरकार क्या स्टैंड ले रही है और जो विपक्षी दल हैं वो क्या स्टैंड ले रहे हैं। मेन मैं बात कर रहा हूँ, मुख्य बात कर रहा हूँ। देखिए, मेन जो आरोप है वो है पेगायस, जो सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर है कह लीजिए, वो जासूसी का काम करता है। इसराइल की एक कंपनी बनाती है और इसराइल की एक कंपनी का दावा है कि हम यह सॉफ्टवेयर केवल सरकार को बेचते हैं, सरकारों को बेचते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बेचते कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम उसको दे दें, हम केवल सरकार को देते हैं, राइट। और अब अगर भारत में मान लीजिए कि यह जासूसी हो रही है और कंपनी कह रही कि हम सिर्फ सरकार को देते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार करा रही है, इसका अर्थ यही निकल रहा है। विपक्ष इसको पकड़े हुए है, है ना। तो विपक्ष की जो मांग है वो फिलहाल अभी ये है, जो सबसे बड़ी मांग है, दूसरी भी है, कि सरकार ये बताए कि वो जासूसी करा रही है या नहीं करा रही है। सरकार इसका बहुत स्पष्ट आंसर नहीं दे रही है, है ना। वो अलग तरीके से उसके उत्तर दे रहे हैं कि ये किस समय आया, क्यों आया, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा को ज़्यादा भटकाने की कोशिश हो रही है, खतरा पैदा कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिससे विपक्ष संतुष्ट नहीं हो रहा है। ये इसकी फिलहाल मुख्य समस्या है। और इससे जुड़ी हुई जो दूसरी बातें हैं वो तो है ही। देखिए, जासूसी चाहे सरकार की हो या नागरिकों की हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की हो, किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता ही है। और ये जो पेगासस जासूसी का जो मामला है, और भी दूसरे देशों के साथ भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। नो डाउट कि इसमें जो प्राइवेसी का भी मामला है, क्योंकि अगर मेरी बात सब कुछ सुनी जा रही है तो स्वाभाविक है कि जो सुन रहा है उसे मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, वो उन सारी बातों का इस्तेमाल किसी भी बात के लिए कर सकता है। तो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का ही प्रश्न नहीं है, लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वह प्राइवेसी की भी है, निजता की भी है। तो पेगासस पर अभी आपको और भी इस तरह की बातें पढ़ने को मिलेंगी। मैं चाहूँगा कि उन सबको अभी आप थोड़ा सा धैर्य से देखें। बहुत स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि सर हम अभी नोट्स कैसे बनाएं, तो अभी आप तथ्यों को इकट्ठा करें और इसके बाद जब चीज़ें थम जाएं तब नोट्स बनाएंगे, तो शायद मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। फ्रेंड्स, कल हम लोग कोऑपरेटिव के बारे में बात कर रहे थे, सहकारिता के बारे में, कि किस तरह से 97th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। उसमें मैं दो तीन तथ्य आपके सामने और रखना चाहूँगा। अब आप देखिए कि हमारा अलग से सहकारिता मंत्रालय आ गया है, केंद्र के पास ये मंत्रालय है, तो डेफिनेटली ये मान करके चला जा रहा है, या आप यूँ कह लीजिए कि जो केंद्र है वो अब सहकारिता के क्षेत्र में एक्टिव होना चाह रहा है। उसे लग रहा है कि सहकारिता से देश का कायाकल्प किया जा सकता है, और ये सच भी है। अभी भी मतलब ये कहा जाता है कि हमारे देश के लगभग 40 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहकारिता से जुड़े हुए हैं। सहकारिता के बहुत से हमारे जो मॉडल हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं। अमूल का नाम आप जानते हैं, लिज्जत का नाम आप जानते हैं, क्रिबको के बारे में जानते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सहकारी संगठन हैं। जो हमारे यहाँ बहुत से चीनी मील हैं वो सहकारिता के क्षेत्र में चल रही हैं, दुग्ध में तो इसने कमाल किया ही हुआ है। तो बहुत गुंजाइश है, और भी दूसरे क्षेत्र हैं जिनमें सहकारी काम करने लगे हैं, इसका संभावना तो बहुत है। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जब पूंजीवाद या प्राइवेटाइजेशन का अगर आपको विरोध करना है, या कह लीजिए कि उसके समानांतर कोई तंत्र खड़ा करना है, तो आप सहकारिता का तंत्र खड़ा कीजिए। क्योंकि सहकारिता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है कि जो भी प्रॉफिट होगा वह उसके सदस्यों में वितरित हो जाएगा। इससे अच्छी बात और क्या होती है, हो सकती है। साथ ही कि उसमें जो लोग होते हैं वे लोग होते हैं जिनका सीधे सीधे उसमें इंटरेस्ट होता है कि वो लाभ कमाए, तो वो अच्छे से काम भी करेंगे, धन का वितरण भी अच्छे से होगा। तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति में इस समय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से दो सबसे बड़े फायदे विशेषज्ञ देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन ने हमारे उस फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया है। मैं आपको कल बता चुका हूं कि ये स्टेट सूची का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग लगभग यही स्वीकार किया है। तो यहां उसने जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कही कि जो केंद्र हैं, वो जो इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनके बारे में तो कानून बना सकती है। इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्या मतलब है? किसी एक राज्य में वो सहकारी समिति है, लेकिन दूसरे राज्यों में भी उसकी ब्रांच है, या वो दूसरे राज्यों में भी फैली हुई है, कई राज्यों में। तो अब जो कई राज्यों के बारे में जब कानून बनने की बात आएगी, तो अगर एक सोसाइटी एक है, जैसे मान लीजिए अमूल है तो गुजरात में है, चलिए गुजरात सरकार अपना कानून बना रही है, मध्य प्रदेश में भी है तो मध्य प्रदेश सरकार के अपने कानून है वो अमूल पर लागू हो रहे हैं, हरियाणा में है तो उनके अपने कानून लागू हो रहे हैं, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जो इंटर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके लिए केंद्र कानून बना सकती है, लेकिन जो स्टेट के अधिकार हैं अपने राज्यों के सोसाइटीज़ के लिए, उसे इंटैक्ट रखा गया है। तो इस तरह से हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो महत्वपूर्ण रहा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन दे करके केंद्र सरकार को एक मैसेज दे दिया है, और वो मैसेज यह है कि सहकारिता मंत्रालय आपने बना तो लिया है, लेकिन इसकी जो कार्य प्रणाली होनी चाहिए वो मर्यादा के अंतर्गत होनी चाहिए। ऐसा न हो कि चूंकि हमारे पास मंत्रालय हो गया है तो फिर अब हम कुछ भी करें, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो डेफिनेटली फिर से मामला उलझेगा। तो एक प्रकार से आप यूं कह लीजिए कि अनजाने में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा सहकारिता मंत्रालय है उसके लिए मर्यादा की रेखाएं निर्धारित कर दी हैं। विशेषज्ञ इस आप कह लीजिए डिसीजन को इन दो रूपों में देख रहे हैं। आगे आपको और भी पॉइंट्स पढ़ने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए अपना अपना विजन है, तब आप उसे उन पॉइंट्स को इसमें नोट करते चलें। फ्रेंड्स, जो अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है टोक्यो ओलंपिक। इसके बारे में मैं आपको केवल एक कुछ फैक्चुअल्स जानकारियां दे रहा हूं, और ऐसा मैं देखिए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है कि इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे, उस ओलंपिक ईयर्स के बाद जो मेन एग्जामिनेशन हुए थे उसमें इस पर प्रश्न पूछे गए थे, और मुझे यहाँ तक ध्यान आ रहा है कि खेल से संबंधित एक निबंध भी लिखने को कहा गया था। अब मैं ऐसा तो नहीं कहता कि वो चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, लेकिन हम संभावना को लेकर के चलते हैं। तो आइए, आज से जो ओलंपिक है वो शुरू हो रहा है, तो आप अभी से अगर सतर्क हो जाएंगे तो आपको अलग से फिर कुछ रटना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे चीज़ें सतह दर सतह आपके दिमाग पर बैठती चली जाएंगी और आपकी पकड़ इस टॉपिक पर अच्छी हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ फिलहाल आपको कुछ केवल फैक्ट्स बताने से। मैं आपको केवल फैक्ट्स बता रहा हूँ। टोक्यो ओलंपिक आपको मालूम है कि पिछले साल होने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके कोरोना की वजह से वो टालना पड़ा, लेकिन अभी हो रहे हैं, कोरोना अभी भी है। ऐसी स्थिति को देखते हुए पूरे के पूरे जापान में आपातकाल लगा दिया गया है, जो खेल के खत्म होने तक लगा रहेगा ताकि संक्रमण को रोका जा सके। 1964 में भी टोक्यो में ओलंपिक हुआ था। देखिए, किसी भी जगह पर दोबारा ओलंपिक का होना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ ओलंपिक हो, इसके लिए भाग दौड़ लगी रहती है, लेकिन स्वीकृति नहीं मिलती। तो टोक्यो में दोबारा ओलंपिक हो रहा है। 1964 में पहली बार वहाँ हुआ था और ये 32वां ओलंपिक है। ये कुछ आंकड़े हैं, बस आप ध्यान रखिए, रटने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अभी तक ऐसा हुआ है कि 3 बार ये जो ओलंपिक गेम हैं कैंसिल किए गए हैं, और इसके पीछे विश्व युद्ध रहे। एक बार 1914 में कैंसिल किया गया, आपको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत थी। इसके बाद 2 बार कैंसिल किए गए सेकेंड वर्ल्ड वार का पीरियड आपको मालूम है, जो 1939 से शुरू हुआ था, तो 1940 में ही ओलंपिक होना था, उसे कैंसिल करना पड़ गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट ओलंपिक होना था 4 साल के बाद 1944 का, उस ओलंपिक को भी कैंसिल किया गया। तो यानी कि 3 ओलंपिक कैंसिल करने पड़े, जिसका कारण विश्व युद्ध रहा 1914, 1940 और 1944, राइट। इसका जो शुभंकर है ना, एक शुभंकर बनाया जाता है, शुभ दृश्य आप कह लीजिए, चित्र कह लीजिए, तो उसका नाम रखा गया है, वो है, उसका नाम है मिराई तोवा। मिराई का मतलब होता है भविष्य, फ्यूचर, और तोवा का मतलब होता है अनंत काल, मिराई तोवा। देखिए, इस तरह के छिटपुट छिटपुट क्वेश्चन सिविल सर्विस में नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ तथ्य अगर आपके पास दिमाग में है तो इन पर प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हें लिखने में आपको मदद मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आप दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो शायद उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो टोटल इसमें जो खेल होने हैं, 33 खेल होने हैं, 33 स्पोर्ट्स, और इन 33 स्पोर्ट्स के अंतर्गत 339 स्पर्धाएं होंगी। 33 स्पोर्ट्स होंगे, उसके आगे 9 लगा दीजिए तो उतनी स्पर्धाएं होंगी। इसमें टोटल 200 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। मैं ये आंकड़ा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेडियो न्यूज़ में 206 देश भाग ले रहे हैं कहा गया, लेकिन जब आप आज के इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसमें 204 देश भाग ले रहे हैं ये लिखा हुआ है। तो बेहतर होता है कि जब भी आंकड़ों में ये फर्क आए तो आप लगभग शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आप लिखना ही चाह रहे हैं तो कह लीजिए कि लगभग 200 देश भाग ले रहे हैं या 200 से ऊपर देश भाग ले रहे हैं, और इसमें 11,000 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। सोच करके देखिए, 11,000 खिलाड़ी। और दोस्तों, इन 11,000 खिलाड़ियों में हमारे हैं 127 खिलाड़ी। इससे पहले मैंने 126 खिलाड़ियों के बारे में बात की थी, आपको ध्यान होगा, लेकिन अब जो डेटा आ रहे हैं वो 127 खिलाड़ियों का आ रहा है। उस समय भी आकाशवाणी ने 126 कहा था, अभी उन्हें 127 कहा गया है, तो 127 खिलाड़ी हम मान लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ से जो खिलाड़ी गए हैं, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि हरियाणा और पंजाब, ये हमारे आप कह लीजिए स्पोर्ट्स हब हैं, इन दोनों की अगर पॉपुलेशन को मिला दी जाए तो इनकी दोनों की पॉपुलेशन होती हमारी कंट्री का 4.4%, 4.4%। लेकिन जो ओलंपिक टीम भेजी गई है इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं, 40% लगभग 40% खिलाड़ी केवल इन दो राज्यों से हैं, लगभग 40% पंजाब और हरियाणा, और पॉपुलेशन कितनी है 4.4%। आप सोच सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मजेदार बात है कि अगर हम हॉकी टीम को देखें, महिला हॉकी टीम को, तो उसमें 19 मेंबर हैं, 19 इस मेंबर्स रखे गए हॉकी टीम के, उन 19 में से 9 हरियाणा से हैं। तो सोच करके देखिए, तो हरियाणा और पंजाब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो खिलाड़ी गए हैं दोस्तों, उसमें फिर पास्ट मार्च होता है, शुरू में ही पास्ट मार्च होता है, सभी देश के जो खिलाड़ी हैं अपने अपने देश के झंडों झंडों को लेकर के उसमें पास्ट मार्च करते हैं, स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हालांकि स्टेडियम में इस बार दर्शक तो होंगे नहीं, लेकिन इसको रखा गया है। तो पहली व्यवस्था ये की गई है कि इस बार एक देश से दो खिलाड़ी होंगे, पहले दो नहीं होते थे। झंडा उठाने वाला, जो झंडा मैं कह रहा हूँ खासकर अपने देश के संदर्भ में, फ्लैग कह लीजिए, तो एक ही खिलाड़ी होता था, हम तो तिरंगा कहते हैं, एक खिलाड़ी तिरंगा लेता था। इस बार दो खिलाड़ी तिरंगा लेंगे, जिसमें एक महिला खिलाड़ी हैं। आप सोच सकते हैं कि यह सम्मान किसको दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। हमारी जो महिला मुक्केबाज है मेरी कॉम, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है, वो होंगी, और दूसरे हैं हमारे हॉकी के जो कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, ये, और ये दोनों भारतीय ध्वज वाहक होंगे। फ्रेंड्स, इस बार के ओलंपिक में 4 नए खेल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट है। 4 नए खेल, सुन लीजिए वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 स्केटबोर्ड, दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, और चौथा है कराटे। ये 4 नए खेल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। किसी किसी अखबार में आपको ये भी मिलेगा कि 5 नए खेल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इस तरह के कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, जो इनफैक्ट सच पूछे तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, लेकिन थोड़ा सा जब भी आपको ऐसा लगे तो थोड़ी आप मदद ले लिया कीजिए, गूगल महाराज की या और किसी की। लेकिन इसमें जो बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल दो गेम हैं, ये बेसिकली इनकी वापसी हुई है, मतलब ये पहले थे, बीच में किसी वजह से बाहर कर दिए गए थे, अब फिर इन्हें शामिल कर लिया गया था, लेकिन एकदम नए खेल ये नहीं है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, भारत ने अपने खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए एक चीयर फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत की है, चीयर फॉर इंडिया अभियान। तो ध्यान हो कि ये चीयर फॉर इंडिया अभियान किससे संबंधित है। तो मैंने दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स आपको बताए हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में, आज से शुरू हो रहे हैं, आप सब इन्हें एंजॉय करें। बीच बीच में देखें कुछ खेल जो आपके पसंद के हो, ऐसा मत सोचिए कि नहीं 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 आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा समय लगाइए, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन है मुझे लगता है कि सही मायने में हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। मुख्य विषय के बारे में दोस्तों बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं में से कुछ मित्र हैं, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से। नेहा, तुम्हारी भाषा सच में कभी कभी चमत्कृत करती है। लिखने का जो तुम्हारा अंदाज है देख करके लगता है कि अरे वाह क्या बात है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरे दोस्त हैं अनामिका विमल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, और ज्योति केशरवानी आप भी हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। दोस्तों, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना अपना ध्यान रखें, मेरी शुभकामनाएं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।